हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस जागृति कार्यक्रम में। और पिछली बार हम रिस्क फैक्टर या वाव फैक्टर से संबंधित एक चर्चा प्रारंभ किए थे। किसे याद है? द टू बैकबोन्स ऑफ अवर स्पिरिचुअल लाइफ। बिना देख के बताइए। हम आशा ये करते हैं कि जो हमारे डिस्कशंस हम लोग यहाँ पर करते हैं, कम से कम जो मुख्य मुद्दे हैं हम लोग याद रखें कि हम उसमें क्या सीखना चाहते हैं या टेक होम मैसेज जिसके ऊपर हम न केवल बैठकर श्रवण करें बल्कि मनन करें। तो क्या ये दो बोन्स कौन से हैं? वो तो हम पढ़ रहे हैं सामने। दोनों का अर्थ क्या है, कौन बता सकता है? विश बोन और विल बोन। हाँ सही कह रहे हैं आप, गुरु के सेंस का है। तो और किसी को कुछ याद है थोड़ा बहुत? तो विश बोन है जब हम एक ऐसा जीवन जीते हैं, आकांक्षाओं का जीवन। आकांक्षा समझते हैं ना सब लोग, अपेक्षाओं का जीवन। विश I would have been a little more wealthier. Wish I would have been little more educated. तो ये जो wish bone है, इसका जो list है, हम लोग साधना भक्ति में आने के बाद भी ये list हमारा रहता है, बरकरार रहता है। खाली उसके characters बदल जाते हैं थोड़े। तो भक्ति में आने के बाद ये विश लिस्ट जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में फेमस टर्म है विश लिस्ट। तो भक्ति में आने के बाद ये विश लिस्ट में एडिशंस और सब्ट्रैक्शन क्या क्या होते हैं, कौन से चीज ऐड हो जाते हैं विश लिस्ट में? काश मैं मंदिर के पास रहता। या कई लोग जो मंदिर के पास रह रहे हैं वो कहते हैं काश मैं मंदिर से दूर रहता। गलती कर दी, अब फंस गए यहां। ऐसा भी होता है। तो एक मैंने उदाहरण दिया है कि ये जो विश लिस्ट की शुरुआत कौन से शब्द से होती? काश, इस शब्द से शुरुआत होती। काश मेरे सास ससुर भी भक्त होते, काश मेरे बच्चे दूसरे बच्चों की तरह वो भी चैंटिंग करते, तिलक लगा कर आते। और क्या विश लिस्ट में, और क्या क्या? काश अनर्थ दूर हो जाते ऐसे। फिर क्या होता? शुद्ध भक्त हो जाते हैं, फिर भौतिक संसार की जरूरत नहीं होती। एक क्रिश्चियन सेंट हुए, सेंट ऑगस्टीन। और सेंट ऑगस्टीन ने एक प्रार्थना की, उनकी एक बहुत सारी प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना उनकी ये थी कि ओ लॉर्ड फ्री मी फ्रॉम ऑल द मिसगिविंग्स, मतलब अनर्थस, बट स्लोली, नॉट सो सून, तुरंत। तो हाँ, जैसे हम लोग बोल देते हैं भगवान मेरे अनर्थ पूरे दूर कर दीजिए। कई बार क्या हम ऐसी शुद्धता को झेल पाएंगे? प्रश्न ये है, डू वी रिक्वायर अनर्थस इन अवर साधना भक्ति? काफी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है, क्या हमको अनर्थों की जरूरत है? कितने मानते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, नहीं नहीं, वो तो है, वो तो बहुत अच्छे स्टॉक में है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जरूरत है क्या, उसकी आवश्यकता है क्या? आपने हाथ ऊपर किया था, बोलिए। तो रियलाइजेशन होता है मटेरियल लाइफ का, मैं इसको इस लॉजिक से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जब बीमार अवस्था में हूं तो मुझे स्वस्थ अवस्था का वैल्यू समझ में आता है, ये बोल रहे हैं। बीमार अवस्था में किसकी दवाई की इंपॉर्टेंस भी पता चलती है। हाँ, जैसे मान लो कि हमें कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, तो कितने सारे केमिस्ट शॉप्स हैं, हम लोग गुजरते भी हैं, कभी कोई मायना नहीं रखता वो, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो फिर कौन सा खुला है? हाँ, रात के 11:30 और ये कौन सा वाला खुला है, तो वो मायना रखता है। हाँ, तो ठीक है, आपका ये पॉइंट वैलिड है, इसको हम इंक्लूड करेंगे। और एंगर सर्विस, यस, भगवान की सेवा के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में। और क्या जरूरत है इसकी? अच्छा पॉइंट, कि हम भगवान को बता सकते हैं कि हाँ भाई, हम प्रयास कर रहे हैं इन अनर्थों से मुक्त होने का और आपको पाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान यही देखना चाहते हैं कि हम लोग हमारी तरफ से कितनी उत्सुकता से भगवान को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपको चाहते हैं। देखिए, इस भौतिक संसार में हमको साधना भक्ति में जो प्रगति करनी है वो हमारे स्थिति के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार उसमें प्रगति लानी है। हाँ, हम लोग पढ़ते तो हैं, हमारे जो षड गोस्वामी हैं, हमारे आचार्य हैं, जो आध्यात्मिक संसार में जो मंजरियां थे, तो इनके विषय में हम पढ़ते हैं कि इनका स्टैंडर्ड क्या था साधना का। और फिर जब इनके विषय में, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, क्या उनका स्टैंडर्ड था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका क्या स्टैंडर्ड था? या जैसे आप लोग गृहस्थ आश्रम में हो, तो जो आइडियल गृहस्थ हमारे संप्रदाय में हुए, उनका स्टैंडर्ड क्या था? भक्ति विनोद ठाकुर का क्या स्टैंडर्ड था एज अ गृहस्थ? तो ये सब जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और फिर हम अपने आप को देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर और फिर एक हम जो ठाकुर बने हुए, तो धीरे धीरे हमें इसलिए गीता में भगवान ने कहा है शनै शनै उपर्यमेद, कि जो प्रोग्रेस है भक्ति में, विशेष रूप से इस भौतिक संसार में कलयुग में, शनै शनै, शनै शनै का अर्थ क्या है? ग्रेजुअली, प्रभुपाद ने बहुत समय ये शब्द इस्तेमाल किया, ग्रेजुअली वी प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस एंड दैट इज वेरी हेल्दी. क्यों? Why it is healthy? Gradual progress. क्यों वो healthy क्यों है? चल रहा है क्या? हाँ बोलिए ना, आप ही का पॉइंट है, आप बोलिए.
दिवाली के रॉकेट की तरह अगर प्रोग्रेस इमीडिएट हो जाएगा तो वो वैसे ही नीचे आ सकता है, अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है तो.
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या गारंटी है कि अभी अगर भगवत धाम हम वापस जा रहे हैं तो वहां से फॉल डाउन नहीं होगा, क्योंकि जो चित फीचर है, चित फीचर को कहते हैं नॉलेज फीचर. तो जो नॉलेज फीचर है वो हमको इस भौतिक संसार के जो भयावह एक्सपीरियंसेस है उसके इंप्रेशंस याद दिलाकर रखेगा. इसलिए जैसे कि नीलमाधव प्रभु कह रहे थे, जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल हम उससे गुजरते हुए जब भक्ति करते हैं तो उसका जो इम्प्रेशंस हैं, उसके जो रियलाइजेशंस हैं, वो रियलाइजेशंस हमको फिर से वही कार्य में नहीं गिरने के लिए मदद करते. जैसे मुझे याद है, मैं राधानाथ महाराज के साथ था उड़पी में, ऐसे ही हेल्थ रिक्यूपरेशन के लिए महाराज को डॉक्टर ने कहा था कि उनको ओशन के पास रहना है और रोज समुद्र में स्नान करना, उनके अस्थमा के लिए कहा गया था किसी डॉक्टर ने. तो बीच हाउस पर थे हम लोग, तो वहां पर महाराज ने, मैं, गोविंद प्रभु और रघुपति प्रभु, हम लोग तीनों थे. तो महाराज ने पूछा कि हम लोग जो अपने अलग अलग भजन हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे, कि हम वापस जाएं तो फिर नए नए भजन जो हैं वो भक्तों के लिए गा सके. तो भी बहुत से भजन हमको पता था, उनके ट्यून मेलोडीज, लेकिन महाराज इतने बिजी तो महाराज को नए नए भजन उनके मेलोडीज वगैरह नहीं पता. तो हम लोग बता रहे थे महाराज को एक एक ट्यून, और महाराज हारमोनियम पे उसको प्रैक्टिस करते थे दिन भर. तो फिर महाराज एक बार कहे, इन माई लाइफ वॉट एवर आई हैव अचीव्ड विथ ग्रेट स्ट्रगल. अब जैसे अपने एक, मेरे को याद है हम लोग वो ट्यून महाराज को सिखा रहे थे, जय जय जगन्नाथ वाला ट्यून, जय जय जगन्नाथ भजन है ना, तो उसका जो ट्यून, जय जय जगन्नाथ शचिर नंदन, ये ट्यून सुना आपने, त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदा. तो ये ट्यून मैंने एक जगन्नाथपुरी की यात्रा में, रथ रुक गया था और सब लोग बैठे हुए थे, जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं बढ़ रहा था तो सब लोग रुक गए बैठे थे. तो एक वहां पर उड़िया डिवोटी, वहां का ही, पुरी का ही, वो ये भजन गा रहा था. तो मुझे ये ट्यून बहुत अच्छा लगा, तो मैं महाराज को ये ट्यून बता रहा था, ये हमारा भजन है हमारे संप्रदाय का. तो महाराज इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, महाराज को ये ट्यून अच्छा लगा, लेकिन एक दिन, दो दिन, तीन दिन हो गया महाराज को बैठ नहीं रहा था ट्यून. तब महाराज ने कहा, इन माई लाइफ समथिंग लाइक अ ट्यून, बिकॉज यू आर यूज टू इंडियन singing, therefore it is easy for you to pick up, but for me it takes hard struggle. तो महाराज ने उस पॉइंट के ऊपर फिर आधे घंटे हमको समझाया। महाराज ये बता रहे थे जर्नी होम हम पढ़े हैं, उस टाइम तो जर्नी होम बुक आया भी नहीं था, तो महाराज बता रहे थे कि कैसे आप लोग इस्कॉन से जुड़े और मैं इस्कॉन से जुड़ा, मेरे को कहां कहां घूम फिर के जाना पड़ा, पूरा मिडल ईस्ट, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जगहों पर से घूमकर फिर कहां से मुझे इंडिया में एंट्री, उसके बाद में इंडिया के अंदर आने के बाद में हिमालयाज, फिर नेपाल भी चला गया, मिथिला, फिर बाद में वृंदावन, और फिर फाइनली बंबई में प्रभुपाद की शरण। इतने सालों में महाराज बोले फॉर यू इट वॉज सो ईजी। और हाँ, हम लोग यहां पर जो बैठे हैं कितने इतना घूम के गए प्रभुपाद से मिलने के लिए कि घर से निकले और इतने देशों में घूमने के बाद फिर प्रभुपाद से भेंट हुई। कितने आसानी से हम लोग इस्कॉन के संपर्क में आए, कोई मेहनत हमने नहीं की। तो महाराज ये मुद्दा बता रहे थे तो हमको लग रहा था कि कितने हम लोग भाग्यशाली हैं, महाराज हमको थोड़ा ऊंचे लेवल पर स्थित कर रहे थे कि आप लोग कितने भाग्यशाली कि तुरंत आप लोग इस्कॉन के कांटेक्ट में आ गए, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही। तो थोड़ा हम अभिमानी हो रहे थे। फिर फाइनली महाराज ने कहा बट एनीथिंग विच यू गेट इजिली इज लॉस्ट इजिली। और तब समझ में आया कि खतरा कहां ज्यादा है। इसलिए जब भक्ति में हमको उपलब्धियां भी आसानी से मिल जाती हैं, भक्ति की उपलब्धियां, उसमें भी खतरा है, क्योंकि हम फिर उसको सहजता से ले लेते हैं। इसलिए ये जो सहजियावाद है, सुना है आप लोगों ने सहजियावाद, चैतन्य महाप्रभु के पश्चात गौड़ीय संप्रदाय में अधिकांश सब सहजिया ही भरे हुए मिले। कब तक? जब तक कि भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत, उन्होंने इनका पर्दाफाश नहीं किया तब तक। तो ये सहजियावाद क्या था कि इतनी आसानी से जो चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया है, ये शुद्ध भक्ति का मार्ग, उसको सहज तरीके से और फिर धीरे 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 उसके अंदर अर्थवाद करते हुए मिसयूज, उसका दुरुपयोग करने लग गए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर से पहले गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को लोग बहुत ही गिरा हुआ पतित मानते थे और सब प्रकार के भ्रष्ट बाबा जी इसके अंदर होते हैं, ऐसा मानते थे लोग। और केवल भक्तिविनोद ठाकुर थे जिन्होंने इसका जो इसकी जो शुद्धता है वो निकाल कर प्रस्तुत की। तो मूल कारण क्या था? सहजता से। इसलिए जैसे हम अपने एक संडे क्लास में कह रहे थे, एनीथिंग विच वी गेट abundantly and very easily is taken very cheaply। जैसे महाराज का संडे हमने क्लास लगाया था लाइव, महाराज ये कह रहे थे that human life, specially in India, because there are so many humans, महाराज कह especially in Bombay, so many humans, so we take it so cheaply। अब देखो जैसे नासिक में इवन आप अगर जानवरों को लो, पशु पक्षियों को लो, तो जो कॉमनली चिड़िया है, कौवे हैं, इनको देखकर कभी आपको कुछ ऐसे लगता अरे आज मैंने चिड़िया को देखा, अचानक कल नासिक में आप मोर को देखो, हमारे कदम वृक्ष के ऊपर, है ना, सब लोग आ जाएंगे अपना फोटो निकाल के व्हाट्सएप में, नासिक में मोर, है ना, सबको फोटो भेजेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर है। वही आप वृंदावन साइड में जाओ, उधर तो इतने मोर दिखते हैं, लोग उनकी आवाज से परेशान हो गए। मुझे याद है हम लोग जब गांव जाते थे तो हमारे गांव में इतने मोर, तो हमको मोर देखकर और वहां के लोग उनको मोर देखकर वो परेशान हो गए थे, इतनी आवाज करते हैं रात को ये लोग। तो ये ह्यूमन साइकी, जो भी चीज हमको बहुत प्रचुर मात्रा में और आसानी से मिल जाती है उसे हम बहुत चीपली ले सकते हैं, इसका बहुत बड़ा खतरा है। और जिस दिन हमने वो चीपली लेना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद उसको वैल्यू, उसकी समझना बहुत कठिन होता है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक। इसलिए बहुत दृष्टिकोण से जो पाश्चात्य देश के भक्त, उनका एक एडवांटेज क्या है कि उनको ये सब कुछ कभी किसी ने बताया नहीं, ऐसा लाइफस्टाइल, और उनके लिए ये न केवल एकदम इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लाइफस्टाइल रहा कृष्ण कॉन्शियसनेस का, बल्कि उन्होंने देखा कि वो कितने मेहनत से उन्होंने चार नियम, सबसे पहले चार नियम इसका पालन करना, जैसे कंठी माला पहनना, धोती कुर्ता, साड़ी, तिलक, हमको इतना मुश्किल नहीं हुआ ये सब अपनाने में जितना उन लोगों को, इसलिए उन लोगों को ये सब चीज का वैल्यू अभी तक है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि पॉइंट हमारा क्या था कि जब हम मेहनत कर अपनी स्वयं की मेहनत से जब हम अनर्थों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं तो उसके अंदर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेटिस्फैक्शन, जैसे बहुत लोग पूछते हैं क्या भगवान खुद आकर हमको तुरंत सब कुछ शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्ति प्रदान नहीं कर सकते, हम कभी वैल्यू नहीं करेंगे उसको? कर सकते हैं, भगवान कुछ क्या कुछ नहीं कर सकते, तुरंत अभी आकर हमको दे सकते हैं शुद्ध भक्ति, हम उसको झेल नहीं पाएंगे। प्रश्न ये है, इसलिए प्रभुपाद ने भी जो इतने सारे कार्यक्रम रखे हैं इस्कॉन के अंदर, प्रभुपाद ने कहा हमारा कार्यक्रम एक ही होना चाहिए था, हम लोग वृंदावन मायापुर जाके 24 घंटा कीर्तन करना चाहिए था, लेकिन वो हम लोग के पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये प्रीचिंग, वो प्रीचिंग, ये प्रोजेक्ट, गौरक्षा, गुरुकुल, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, रथ यात्रा, टेम्पल ओपनिंग, ये सब कुछ अलग अलग लगाया। तो इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो मेहनत है, जितना हम मेहनत डालेंगे साधना भक्ति में उतना उसका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो हमारे अंदर बना रहेगा। और जितना सब कुछ इजीली मिलता रहेगा, हर समय चौकन्ना रहना हमें, उसके अंदर खतरा है। समझ में आ रहा? तो ये है विश बोन, विश लिस्ट, जो कि सेंसेस, माइंड और सोसाइटी के द्वारा और गुरु, साधु और शास्त्र के आधार पर कि हमें आवश्यक क्या है हमारी प्रगति के लिए। इसलिए ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, इन दोनों में बहुत ही विशेष अंतर कर हमको चयन करना है। अगर हम केवल हमारे विशलिस्ट को फुलफिल करते हुए ये समझें कि हाँ मेरा भक्ति एकदम कन्वीनियंटली चल रहा है, तो हमने ये दोनों के कनेक्शन में एक एक अलग अलग जो विशेष लेते हैं डिवोटीज भगवान से मांगते हैं, आई आस्क्ड कृष्णा फॉर स्ट्रेंथ, किसको याद है व्हाट डिड कृष्णा गिव? कृष्णा गेव मी डिफिकल्टीज टू मेक मी स्ट्रॉन्ग, आई आस्क्ड कृष्णा फॉर विजडम एंड कृष्णा गेव मी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। वो राग कृष्ण प्रभु को बुलाना, ऑडियो कॉर्ड लगाने का है क्या? अच्छा, ये पॉइंट पिछली बार हमने इस पर इतना गौर नहीं किया था, परंतु मैं थोड़ा सा एक डिस्कशन इनिशिएट करना चाहूंगा इस पॉइंट को लेकर कि प्रॉब्लम्स के वजह से विजडम प्राप्त होना। एक है विजडम प्राप्त होता है शास्त्रों को पढ़ने से, और एक है विजडम प्राप्त होता है जब आपके जीवन में वही शास्त्रों की बातें आप होता हुआ देखते हैं। तो क्या किसी का एक्सपीरियंस रहा है प्रॉब्लम से विजडम उनको प्राप्त हुआ? विजडम मतलब कृष्णा कॉन्शियस विजडम, इवन कोई नैतिकता का कोई विजडम हो जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज कर सके। किसी का कोई एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज ब्रिंगिंग अबाउट विजडम? जैसे कुंती महारानी कहती हैं कि जब भी उनको विपत्तियां आईं, उस समय जैसे जैसे विपत्तियां आईं उसके बाद उनको ये लगा कि हम हर समय भगवान को पुकारा हूं। अब एक डिवोटी उनका एक रियलाइजेशन बता रहे थे चैंटिंग के विषय में कि जब भी उनके जीवन में कोई तकलीफें आती तो उनका जो चैंटिंग था वो बहुत डेस्परेशन में होता, और जब भी उनके जीवन में सब कुछ उनके अनुसार चलता होता तो उनका चैंटिंग एज अ रूटीन होता, रूटीन रूटीन चैंटिंग। जैसे जयदेव महाराज को यह प्रश्न पूछा गया, Why one has to chant loudly? क्या भगवान को सुनाई नहीं देता है? जोर से क्यों बोलने की जरूरत है? क्या कहोगे आप, क्यों हम लोग जोर से कीर्तन करते हैं? हाँ, ये चल रहा है ना ऑडियो, बोलो माइक पे बोलो।
अटेंटिवली हमें हर एक उच्चारण ठीक से सुनना है,
खुद के लिए, मतलब खुद के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए चैंटिंग करते हैं?
डेफिनेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए। और
तो भगवान की प्रसन्नता के लिए चिल्लाने की क्या जरूरत है?
जन्म सार्थक कर परो उपकार, पहले अपना जन्म सार्थक करो।
अच्छा अच्छा, तो जोर से परोपकार के लिए चिल्लाते हैं। हाँ बोलिए, माइक पे बोलो ना।
एवरी सेंस वी हैव टू यूज इन गॉड सर्विस, सो हियरिंग आल्सो शुड बी मींस ओनली गॉड।
मतलब भगवान ने इतना एम्पलीफिकेशन दिया है उसको यूज कभी करेंगे, वो बोल रहे हैं। जयदेव महाराज कहे, If you are drowning in the middle of the ocean and you see a ship far away, how will you call out for the help? और वो उन्होंने माइक पे उसको इमिटेट भी किया, will you say help help? एक तो आप समुद्र के बीच में हैं और वो शिप इतना दूर है, तो कैसे चिल्लाएं, चिल्लाना पड़ेगा। बोले सिमिलरली अवर कंडीशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज वी आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। तो पॉइंट ये है कि ये डिवोटी बता रहे थे कि इनके जीवन में जब भी तकलीफें आई तो इनके चैंटिंग के अंदर वो जो हेल्पलेसनेस है वो बढ़ गया। और प्रभुपाद बोलते हैं ना कि प्रभुपाद को जब पूछा गया कि हमको किस मूड में चैंटिंग करना है, किसे पता है? वो आपको ऑन करना पड़ेगा।
जैसे आपने एक वीडियो बताया था कि भालू का, कि उसके पीछे वो लगा रहता है और वो जिस तरह से चिल्लाता है और फिर उसकी माँ उसको आकर बचाती है, तो जैसे वो भाव होना चाहिए हमारा कि अभी हमारे हमारे लिए कोई है नहीं बचाने वाला, सिर्फ आप ही हो, तो आप ही तारण करता हो बस।
प्रभुपाद यूज द एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड कि बच्चा जो है जब उसके लिए खिलौने हैं सब खेलने के लिए तो वो माँ को इतना याद नहीं करता। जब उसके एक एक कर कर खिलौने ले जाओ उसके सामने से और उसके पास कुछ नहीं या कोई तकलीफ में अचानक कुत्ता भौंकते हुए आ गया, तब वो कुत्ता भौंकते हुए आ रहा है तो वो खिलौनों को नहीं पुकारेगा, बच्चा सबसे पहले माँ को पुकारेगा। तो प्रभुपाद ने बहुत सिंपल तरीके से समझाया, जस्ट लाइक अ चाइल्ड हेल्पलेसली क्राइंग आउट फॉर मदर्स हेल्प। तो अब यहां पर हम लोग कई बार दुविधा में रहते हैं कि एक तरफ देखो कि जब प्रॉब्लम्स में हैं तो उस समय भगवान की ओर उन्मुख होकर डेस्परेशन में पुकारना वो फेवरेबल हो जाता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, देखो हमारा जो कलयुगी माइंड है वो क्या सोचता है कि हमको वो डेस्परेट कॉल चाहिए अंदर से लेकिन वो तकलीफ नहीं चाहिए, है ना? कि वो तकलीफ नहीं चाहिए, मतलब बेसिकली ये कैसा है कि मुझे एकदम मस्कुलर बॉडी चाहिए बिना जिम गए, है ना? तो आजकल एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना कि वेट लॉस बिना जिम गए, बिना मेहनत किए, खाली ये चाय पियो, होते ना चाय पियो और स्लिम हो जाओगे, स्लिम टी। तो होता क्या है कि हम लोग कलयुग में हमारी मेंटालिटी वो लोग जानते हैं कि हम लोग को ये चाहिए, हमको चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा जो भाव होना चाहिए वो ऐसा, लेकिन वो थोड़ा सा हमारे तरीके से कर दो भगवान तो अच्छा रहेगा। हम आप ही को चाहते हैं और आप ही को प्रेम करना चाहते हैं, थोड़ा हमारे टर्म्स पे हमारी भी आप मजबूरी समझो। लेकिन उसमें होता क्या है कि हमको वो लॉन्ग लास्टिंग रियलाइजेशन प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये डिवोटी, इन्होंने वो जपा का उदाहरण दिया कि कई बार जप सर्कल में उन्होंने देखा कि एक डिवोटी वो बहुत नींद आ रही है, हमने देखा है कई डिवोटीज वो मुश्किल से पूरे एक राउंड में चार पांच उनके महामंत्र जागरूक अवस्था में होते हैं, 108 में केवल चार पांच, ऐसे मैंने बहुत से डिवोटीज को देखा, इतनी नींद आती है। और ऐसा नहीं कि उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती और ये सब, नहीं नहीं बाकी समय एकदम जागरूक रहते हैं। जैसे ही माला हाथ में सुबह का समय, वो पूरा जो कॉम्बिनेशन है सुबह का समय, आप ग्रुप में बैठे हुए हो और बाहर एकदम शांति जैसी है, एकदम ट्वाइलाइट का समय, मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा है और सब लोग भिन भिना रहे हैं अपना महामंत्र, तो वो एक लोरी के समान प्रतीत होता है दूसरों का महामंत्र अगल बगल में। लोरी का काम करता है वो। तो ये डिवोटी बोल रहे थे कि ये स्वयं, इनको कभी नींद नहीं आती थी जब करते समय या श्रवण करते समय इनको नींद नहीं आती थी, लेकिन जब ये देखते थे इस डिवोटी को इतना ये सोता है जब के समय, केवल डोज ऑफ नहीं, डुलकियां नहीं, सोना सोता है पूरा गर्दन झुकाकर, तो इनको पहले तरस आता था इस डिवोटी के ऊपर, बहुत प्रयास किया उनको उठाने का लेकिन इनको तरस आता था। लेकिन अचानक एक दिन इनको ऐसा रियलाइजेशन आया, बहुत सुंदर रियलाइजेशन इनका था, कि मैं मेरा पूरा सोला माला बिना सोए करता हूं, लेकिन मेरे अंदर कितना अभिमान है उसका, कितना फॉल्स प्राइड है मेरे को मेरे जागरूक सोला माला करने का। और ये डिवोटी, क्योंकि ये डिवोटी ने बाद में डिवोटी को कहा जो इतना सोते थे कि प्रभु जी मैं इतना पतित हूं, मैं एक राउंड भी पूरे फुल अवेक कॉन्शियसनेस में नहीं कर सकता और आप कितना अच्छे से करते हैं। तो इनका कॉन्शियसनेस क्या था कि वो एक महामंत्र भी अगर वो जागरूक अवस्था में करते थे तो उनके अंदर वो ह्यूमिलिटी, पश्चाताप, गिल्ट फीलिंग और डेस्परेशन कि पता नहीं अगले महामंत्र में मैं जगा रहूं कि ना रहूं, इसलिए कम से कम ये महामंत्र तो मैं ध्यानपूर्वक अटेंटिवली कर लूं। तो डिवोटी का रियलाइजेशन क्या था कि मेरा जो सोला माला बिना सोए लेकिन पूरा सफ्यूज्ड विथ माय फॉल्स प्राइड, और इनका इनके सोला माला में अगर एक महामंत्र भी ये जगे हुए अवस्था में उस मूड में करते हैं तो भगवान जरूर इनको कृपा दें। फाइनली भगवान क्वालिटी देख रहे हैं। तो अभी इसी को अगर हम हमारे पूरे जीवन में ट्रांसलेट करें, कई बार क्या होता है हम कंपेयर करते हैं, कह रहे वो डिवोटी के जीवन में कोई तकलीफें हैं ही नहीं, वो डिवोटी का कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है, हाँ उसके घर पे सब कुछ सुखपूर्वक है, मेरे घर पे सब कुछ अगेंस्ट है, दूर इतना रहता हूँ, ये लोग पास रहते हैं, फिर बाद में नेबर्स इनके ऐसे हैं, मेरे नेबर्स ऐसे हैं, कितनी सारी चीजें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कौन शेल्टर के मूड में है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जान। आपको याद है एक बार एक सेमिनार मैंने दिया था, सीक शेल्टर नॉट जस्टिस। जब हम लोग हेल्पलेस कंडीशन में होते हैं तो मूड क्या होता है, सीकिंग शेल्टर, सीकिंग शेल्टर। जब सब कुछ सुखपूर्वक आरामदायक भक्ति चल रही है हमारी तो हर समय हमारे ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, वांटिंग जस्टिस। When everything is going our way, we demand justice. When everything is going against our expectation and plans, then we look for shelter. Which is more healthier? Seeking shelter. So, इसलिए ये point बहुत महत्वपूर्ण है. I asked Krishna for wisdom and Krishna gave me problems to solve. आप माइक पे पूछिए।
समटाइम्स द प्रॉब्लम्स लाइक द हेल्थ इश्यूज एंड ऑल दे इन टर्न अफेक्ट द सेवा एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू, तो दोनों तरफ से डिवोटी मरता है। इन द सेंस जो तकलीफ है वो अलग होता है, ये मेंटल दिस थिंग इज अनदर डिफरेंट थिंग, सेवा नहीं कर पाते उसका दुख अलग। तो इन यू नो लाइक द प्रॉब्लम्स वी नो दैट इट इज गोइंग टू प्यूरिफाई अस मोर, पर इस चीज से बहुत तकलीफ होती है कि वी आर नॉट एबल टू सर्व कृष्णा दैट प्रॉपरली.
दैट कॉन्शियसनेस दैट यू आर नॉट एबल टू सर्व कृष्णा बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, दैट कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज सो प्लीजिंग टू कृष्णा. जैसे कि मैं आपको बताऊं, महाराज एक क्लास में कह रहे थे, हाँ, एक माताजी ने क्वेश्चन पूछा था दैट आई एम नॉट एबल टू कम फॉर फेस्टिवल्स एंड यात्रास, यू नो, वेन एवर आई कीप हियरिंग अबाउट देम बट आई एम नॉट एबल टू कम फिजिकली फॉर सच वंडरफुल फेस्टिवल्स एट राधा गोपीनाथ एंड यात्रास एंड ऑल. तो महाराज ने आंसर कैसे शुरुआत किया पता है, अभी भी मुझे याद है. महाराज बोले यू आर सो फॉर्चुनेट. सब लोग बोले महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू आर सो फॉर्चुनेट. और फिर महाराज ने उसको एलैबोरेट किया. महाराज ने कहा समटाइम्स वी सी दैट डिवोटीज हु हैव ऑल फैसिलिटी टू अटेंड ऑल प्रोग्राम्स एंड फेस्टिवल्स एंड यात्रास, दे डोंट हैव दिस डेस्परेशन. So physically they are there in the seva, in the yatra, in all the festivals. But mentally or consciously are they present? That's a big question. And then Maharaj said, we have seen that devotees who easily get access to all festivals and yatras, when they are present there physically and easily they have got it, they are thinking, when will it get over? And devotees like you who are far away during the yatra, they are not able to go for the yatra, they are constantly thinking abhi wo log kahan gaye honge, abhi wo log govardhan ki parikrama chal rahi hogi, abhi wo log barsana gaye honge, who is more fortunate. So Maharaj bole you are more fortunate. Jaise Haridas Thakur ne wo prisoners ko blessings diya na, that story is there. May you remain in this condition. So what was that blessing which Haridas Thakur gave? May you remain in this consciousness. So yes, of course, we want to render quantity service to Krishna. But again, at the end of the day, Krishna, how much quantity can we offer to Krishna? Hum log soche, chalo, my health is good, I want to make 56 offerings for Krishna. Do you think 56 offerings is too much for Krishna? Okay, 108. You think 108 is too much for Krishna? What is 108 as far as quantity is concerned? And then we have the story of the Godavari Brahman. One sweet rice, that too mentally. Kuch bhi nahi tha. And immediately Vishnu Dutas were sent. And he was brought home. So this consciousness is something which we have to cherish. That I am unable to. Hamare Vaishnav songs ke andar mood kya hai? Kabe habe bolo se din amar. When will that day come? When I will be able to chant. Amar jivan sada paape rat. ये सब इन सब का मूड क्या है? ये सब का मूड वही है कि हमको फाइनली उस कॉन्शियसनेस में रहना है. इसलिए देवामृत महाराज, हमने उनका सुंदर क्लास सुना सुबह, देवामृत महाराज अपने एक बार पुणे यात्रा में, वो बहुत सुंदर एक उनके वो बहुत फ्रेजेस बहुत अच्छे रहते हैं, जिस तरीके से वो फ्रेज यूज कर एक्सप्लेन करते हैं. तो देवामृत महाराज वो बोले, इफ यू लुक इन टू Shad Goswami, our role models are the Shad Goswamis of Vrindavan. So Shad Goswami Ashtak mein hai na, He Radhe Brajadevi ke, they are looking for, where are you Krishna? To Maharaj bol rahe the, we are in a sampradaya wherein our sampradaya acharyas, their mission was never accomplished. Welcome. बाहर वालों को अगर आप बताओ कि आप किसको फॉलो करते हो, षड गोस्वामी, देयर मिशन वॉज नेवर अकम्प्लिश्ड, विच मीन्स यू आर फॉलोइंग पीपल हु वर अनसक्सेसफुल from the apparent point of view. It's a very deep thing. People only want to follow those who have their mission accomplished. And here we have Goswami saying, I am not able to find Krishna, Radharani, I don't have any love. I am the most fallen of all. Krishnadas Kaviraj Goswami, jinhone Chaitanya Charitamrit likha ho, to keh rahe hain ki main to jagah madhai se bhi papi hu. और जो मल का कीड़ा है उससे भी ज्यादा गिरा हो. तो वो हम लोग को क्या सिखा रहे हैं कि हमें, हाँ, इंस्टीट्यूशनली यस वी हैव टू रिमेन फिट टू सर्व द मिशन. व्हाट योर क्वेश्चन यू आर आस्किंग, द आंसर इज इंस्टीट्यूशनली यस वी हैव टू डू दैट. बट व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, if we are having that consciousness, that itself is the greatest success. Am I able to cater to your question? Aur kuch kisi ka koi question, comments, suggestions, clarifications, realizations, ecstasies? Okay. I asked Krishna for courage. क्या दिया भगवान ने उसके बदले, इसको याद है? कृष्णा गेव मी डेंजर्स टू ओवरकम. आई आस्क कृष्णा फॉर फेवर्स एंड कृष्णा गेव मी अपॉर्चुनिटीज टू मेक थिंग्स टर्न फेवरेबल फॉर मी. बहुत इंपॉर्टेंट है आस्किंग फेवर्स एंड आस्किंग फॉर अपॉर्चुनिटीज to make things favorable. I asked Krishna for love and Krishna gave troubled people to help. I received nothing I wanted and Krishna gave me everything I needed. Ab ye कॉम्पोजिशन के तौर पे अच्छा लगता है व्हाट्सएप पे भेजने के लिए, है ना? लेकिन जब हमको इस दौर से गुजरना पड़ता है तब फाइनली प्राइवेटली हम भगवान से क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान मैंने इतना थोड़ा तो मांगा था आपसे, आप इतना भी मेरी मांग पूरी नहीं कर सकते, हमारी मांगे पूरी करो ऐसा तो नहीं बोल रहा था मैं, धरना तो नहीं लगाया था मैंने. इसलिए इसमें जो ये जो लास्ट के दो लाइन्स है, आई रिसीव्ड नथिंग आई वांटेड एंड कृष्णा गेव मी एवरीथिंग आई नीडेड, इसके अंदर जो मेन मूड किसी डिवोटी का क्या उभर कर आ रहा है कि भगवान पर दृढ़ विश्वास कि मेरी डोर आपके हाथ, आप जो मेरे लिए आवश्यक है, जरूरत है मेरे लिए, वो आप कीजिए. ऐसा पूरा दृढ़ विश्वास, ये 100% जो इम्प्लिसिट फेथ प्रभुपाद यूज करते हैं भगवद गीता के अंदर. इम्प्लिसिट फेथ मतलब भगवान कृष्ण के अलावा और कहीं पर भी हमारा किसी के ऊपर उतना विश्वास नहीं हो सकता, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फेथ. तो वो ये कि हम जब तक इस बात को मानते हैं कि मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा, मेरे अंदर ये काबिलियत है इसको सॉर्ट आउट करने की, तो तब तक हमारी जो निर्भरता है भगवान के ऊपर, उसके अंदर परसेंटेज कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता. तो अभी अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई है ना मेरे अंदर काबिलियत, और मेरी काबिलियत से मैंने बहुत बार मेरे समस्याओं को खुद के बलबूते पर मैंने सॉल्व किया है। वो आप बोलते हो कि अपनी काबिलियत पर विश्वास मत रखो, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपनी काबिलियत पर विश्वास एज अ डिवोटी? ऐसी बात होती तो हनुमान जी वो समुद्र लांग कर वो लंका क्यों गए? क्योंकि उनकी काबिलियत को याद दिलाया ना अपने जामवन, उन्होंने काबिलियत को याद दिलाया हनुमान जी के, और फिर उन्होंने अपनी काबिलियत को याद करते हुए वो गए कि हाँ मैं कर सकता हूं। यदि हनुमान जी कहते हैं मैं कहां काबिल हूं, मैं तो पतित हूं, अमार जीवन, वो अगर वो भजन शुरू कर देते हनुमान जी, अमार जीवन सदा पापे रह, नाही को पुण्य लेश, क्या काबिलियत, पुण्य का लेश भी नहीं है। आप बोल रहे हो लंका जाकर सीता को बता कर रहा हूं, नहीं। तो प्रश्न ये है कि हमारे अंदर, आप लोग इस बात को तो मानते हैं ना कि सभी भक्तों के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, कॉम्पिटेंस है ना, मानते हैं ना, शर्माओ मत, है, मान लो। तो क्या हमें हमारी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखना चाहिए या केवल भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए? क्या इसमें विरोधाभास है? आप लोग को क्वेश्चन पे विश्वास नहीं हो रहा है, डाउट आ रहा है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। इन वन लेक्चर आई हर्ड दैट कि व्हेन वी हैव टू डू एनी सर्विस देन दैट टाइम वी हैव टू थिंक दैट वी आर डूअर, एंड व्हेन वी प्रे टू कृष्णा वी हैव टू थिंक दैट यू आर द डूअर। सो आई थिंक
यू आर क्लोज, यू आर वेरी क्लोज। कॉन्शियसनेस हमारा इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे मैंने ये प्रश्न पूछा, हमारे अंदर काबिलियत है, कॉम्पिटेंस है। जैसे मान लो आपको कहा गया कि अगला जो 3 दिन का गीता कोर्स है वो आपको देना है, 200 एंट्रीज है, 3 दिन का गीता कोर्स आपको देना। अब आपके अंदर, आपको मालूम है आपके अंदर काबिलियत है बोलने की, गीता कोर्स भी दे सकते हैं आप, लेक्चर दे सकते हैं, 200 लोगों को हैंडल कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, नए लोगों के कैसे भी क्वेश्चंस को, हा? तो अब यहां पर एक कैच है। यदि हम ये सोचकर जाएं लेक्चर देने के लिए कि मैं अपने बलबूते पर इनको इंप्रेस करूंगा या इनको भक्त बनाऊंगा, तो भगवान जब ये देखते हैं तो भगवान करते क्या है कि भगवान धीरे धीरे उसके अंदर से जो पोटेंसी है वो निकल जाती है। मतलब खाली बुलेट्स, ब्लैंक बुलेट्स, ब्लैंक शॉट्स होते हैं ना, आवाज करते ठप ठप ठप, बहुत आवाज आती, आगे कोई मर ही नहीं रहा है। इसलिए जब कोई प्रचारक इस कॉन्शियसनेस में लेक्चर देता है ना कि मेरा सुनो, इंप्रेसिव लेक्चर सुनो और मंत्रमुग्ध हो जाओ, और फीडबैक फॉर्म में क्या लिखना चाहिए, वाव, वहां से शुरू होना चाहिए, हर एक फीडबैक वाव से शुरू होना चाहिए, और उसके बाद में एक के बाद एक लाइन मेरे गुणगान की होनी चाहिए। जब इस कॉन्शियसनेस में कोई लेक्चर देने जाता है तो वो फाइनली ऑडियंस को खाली एक परफॉर्मेंस अच्छा दिखा, लेकिन वो लोग कभी हृदय उनका परिवर्तित नहीं होने वाला है। दे सिंपली सॉ अ गुड परफॉर्मर, दे डिंट मीट अ ट्रांसफॉर्मर। इसलिए हमारे अंदर यदि गाने की काबिलियत है, बोलने की काबिलियत है, कुकिंग की काबिलियत है, श्रृंगार करने की काबिलियत है, काउंसलिंग करने की काबिलियत है, ये सब हमको धरोहर में मिली गई है, इनहेरिटेंस। जैसे हमारा सैफ्रन अवार्डिंग सेरेमनी हुआ, उसमें मैं कह रहा था कि हम लोग जब ट्रेनिंग से पास आउट हुए एयरफोर्स में, तो पास आउट होने के बाद अब परमानेंट हमको यूनिफॉर्म, फर्स्ट टाइम जब यूनिफॉर्म दिया गया, तो उस वो सेरेमनी में हमको बताया गया कि ये जो यूनिफॉर्म आपको दिया जा रहा है, अब इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद आपको बहुत लोग रिस्पेक्ट करेंगे, एज एन एयरफोर्स ऑफिसर लोग सैल्यूट करेंगे, बाहर भी रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगा। ये समझना कि ये आपको धरोहर के रूप में दिया जा रहा है। और हमारे कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर ने कहा था दैट द डे यू लीव द एयरफोर्स यू हैव टू हैंड इट बैक, ये वापस आपको लौटाना है। तो मतलब जो चीज आपको वापस लौटानी पड़ती है, समझ लेना चाहिए कि वो हमारी नहीं है, है ना। जैसे मान लो आप यहां बैठे हो, आपने किसी से फोन मांगा, प्रभु जी मेरे को एक कॉल करना है, फोन दे, तो किस कॉन्शियसनेस में आप फोन यूज कर रहे हैं अभी वो वाला, कि एक कॉल के बाद वापस हैंड ओवर करना। मान लो उन्होंने बेचारों ने अपना कल खरीदा हुआ स्मार्टफोन आपको लाकर दिया 30-35 हजार का, आपने कॉल किया, जेब में डाल के निकल गए। निकल गए तो हुए क्या फिर आप, है ना, समझ गए ना। तो वैसे ही भगवान इस्कॉन में आने के बाद, पहले तो बोलती ही नहीं निकलती थी हमारी, अब इस्कॉन में आने के बाद दो दो तीन तीन घंटा ऐसा साए साए लेक्चर दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में पूरा हम लोग ऐसा कीर्तन करते हैं, ऐसा लेक्चर देते हैं, अब ये वो कुकिंग ऐसा सीख गए, ये श्रृंगार ऐसा सीख गए, सब कुछ होने के बाद में फिर हमको लगता है कि भाई ऐसा मेरे लिए करो अभी। तो किया क्या है हमने, हमको भगवान ने सेलफोन दिया, भैया यूज करो इसको, एक कॉल कर वापस कर देना, हमने जेब में रखकर घूम रहे हैं, और वो भी भगवान के सामने घूम रहे हैं, उनका ही सब कुछ लेके उनके सामने घूम रहे हैं, और उनके सामने डींगे मार रहे हैं कि देखो मेरा फोन, मेरा अभी मेरा हो गया वो, इसलिए उसको बोलते हैं ना आईफोन। देखो ना वो कॉन्शियसनेस कैसे लाते हैं, आईफोन, आईपैड, आईपॉड। तो इसलिए ये जो कैच है ना इसके अंदर, एक पब्लिक स्पीकिंग सेमिनार के अंदर मैंने फाइनल पॉइंट एक इंक्लूड किया था, पूरा उसके अंदर डिटेल्स थे कि कैसे आपको स्पीच प्रिपेयर करना चाहिए, एक इम्प्रेसिव स्पीच कैसा होता है, उसका कॉम्पोजिशंस क्या क्या होते हैं, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने चाहिए, सब कुछ सब कुछ। लास्ट में एट द एंड ऑफ द स्पीच, इफ पीपल गो ग्लोरिफाइंग यू मोर देन कृष्णा, यू हैव फेल्ड। ये क्या था, चालू हुआ कि बंद हुआ? दिवाली मना रहे लगता है। नहीं, आवाज आ रही है ना इस पे से, फिर ठीक। सो सिमिलरली एंड ऑफ द स्पीच, वो मैं बता रहा था कि यदि दर्शक भगवान कृष्ण के कॉन्शियसनेस को लेकर उठते हैं, मतलब दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल पब्लिक स्पीच। That is the success of your speaking. तो इसलिए क्या हुआ, बंद कर दिया, तो अब हम ये एक डिस्कशन हमने हमारे क्लास में किया था कि परिवर्तन या चेंज जो है हमारे अंदर, हमको ये जो तीन लेवल है, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें और फिर हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा मत है, तो ये तीन लेवल है। हम भक्ति में हमने अनुभव किया होगा कि जीवन शैली में परिवर्तन वो इतना मुश्किल था, शुरुआत में इतना मुश्किल नहीं था, ये सब चार नियम, कांदा लहसुन छोड़ना, चाय कॉफी और सुबह जल्दी उठना, नहाना, ये सारी चीज, फिर आदतें। अब जैसे ना हमारे भक्त जब भी फोन उठाते हैं, हरी बोल, हरे कृष्णा, है ना, पहले क्या आदत थी, हेलो, टोन भी अलग था, कौन है, हेलो, परंतु सबसे मुश्किल है हमारा दृष्टिकोण। जैसे कि हमने उदाहरण अर्जुन का दिया था कि अर्जुन अपने अंदर, अर्जुन ने सबसे मुश्किल जो परिवर्तन है वो लाया और अपना मत साइड में रखते हुए अर्जुन ने भगवान का दृष्टिकोण को अपना दृष्टिकोण माना। इसलिए प्रभुपाद ने एक बार, एक मायावादी ग्रुप प्रभुपाद के पास आए और वो लोग प्रभुपाद को कह रहे थे, जो मायावादी सिद्धांत है दैट वी आर ऑल वन। तो प्रभुपाद ने उस समय कहा, हाँ, यस, वी आर वन। प्रभुपाद का एक्सप्लेनेशन क्या है ये वननेस के ऊपर, किसको पता है प्रभुपाद का एक्सप्लेनेशन क्या है? यस, वी आर वन विद कृष्णा। हाँ, यार, ओके, क्वालिटेटिवली वी आर वन। और क्या है? हाँ, वी आर वन विद द इंटरेस्ट ऑफ कृष्णा, दैट इज रियल वननेस। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद ने एक डेमोन्स्ट्रेट करके समझाया इनको। तो एक ग्रुप आया हुआ था तो प्रभुपाद ने कहा, एक ग्लास पड़ा हुआ था, पानी का ग्लास पड़ा हुआ था, तो प्रभुपाद ने उस ग्लास को उठाया, अपने पांचों उंगलियों को लेकर उस ग्लास को उठाया और फिर वापस रखा और फिर प्रभुपाद ने कहा, जस्ट सी, ऑल दीज फाइव फिंगर्स आर डिफरेंट इन देयर साइजेस एंड शेप्स, पांचों उंगलियां अलग है, बट व्हेन ऑल द फाइव दे वांटेड टू पिक अप द ग्लास, their interest was one, पांचों उंगलियों का इंटरेस्ट एक ही था, ग्लास को उठाना। प्रभुपाद कहे, this is called oneness, real oneness। तो अर्जुन को इतना सराहा क्यों जाता है, क्योंकि अर्जुन ने भगवान के इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बनाया। और कई बार हमारी स्थिति क्या होती है कि हम सोचते हैं कि भगवान क्यों आप हमारे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्यों ऐसा नहीं करते? तो इसलिए हम अभी थोड़ा हमारा ये डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे, परिवर्तन के ऊपर। आप लोगों को याद है हमारे एक संडे क्लास में हमने ये स्लाइड लिया था, तो किसी का कोई कमेंट, कोई सजेशन, क्वेश्चंस इस स्लाइड के ऊपर, चेंजेस लाइफस्टाइल और हैबिट्स और व्यू पॉइंट्स, कि आपने कुछ अनुभव किया इस्कॉन में आने के बाद? अनुभव तो बहुत किया होगा, नहीं तो यहाँ पर आप लोग होते नहीं आज जागरूक अवस्था में, जागृति में। तो कंप्लीटनेस ऑफ सरेंडर, स्टार्ट डूइंग सर्टेन थिंग्स फॉर कृष्णा व्हाट यू हैव नेवर डन बिफोर, स्टॉप डूइंग सर्टेन थिंग्स व्हाट यू हैव ऑलवेज बीन डूइंग बिफोर। अब देखिए इसमें हम लोग इसमें इत्मीनान ले लेते हैं कि हाँ भाई, ऑन अ फिजिकल लेवल मैंने कितनी सारी चीजें भगवान के लिए मैंने शुरू की हैं जो मैं पहले नहीं करता था या करती थी, और कितनी चीजें जो पहले मैं करता था जो मैंने अभी बंद कर दिया वो सब कर। लेकिन यहां पर हम एक ऐसे चेंज के विषय में अपेक्षा कर रहे हैं कि जिससे हम लोग वाव फैक्टर की चर्चा कर रहे थे ना, तो ऐसा चेंज जिससे भगवान कहें वाव। हम लोग वाव फैक्टर की चर्चा कर रहे थे, हम लोग बोलते हैं ना भगवान के इतने अलग अलग अवतारों को, उनके लीलाओं को या उनके आंदोलन को देखकर, परंतु क्या हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जब भगवान कहें वाव। जैसे हाल ही में बंबई के एक भक्त आए थे तो मुझको पूछ रहे थे कि प्रभु जी, चैतन्य चरितामृत में आपका फेवरेट सेक्शन बताओ मुझे कौन सा। तो मैं सोच रहा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि फेवरेट सेक्शन, अब पूरा चैतन्य चरितामृत ही फेवरेट है, तो फेवरेट सेक्शन मेरा क्या हो सकता। फिर मुझे तुरंत जो फर्स्ट थॉट चैतन्य चरितामृत के विषय में मेरा आया, तो मैंने वो कह दिया स्पॉन्टेनियसली। तो मैंने कहा मध्य लीला में जब रूप सनातन गोस्वामी पहली दफा अपने आप को शरणागत करते हैं चैतन्य महाप्रभु की ओर, मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगता वो पूरा जो एपिसोड है मध्य लीला में, उसके अंदर वो इसलिए मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि रूप सनातन गोस्वामी की जो नम्रता है, उस नम्रता को देखकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रुक जाओ, योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माई हार्ट। तो सोचो कि कितने, कौन से लेवल पर उनकी नम्रता थी कि चैतन्य महाप्रभु जो कि खुद नम्रता के मूर्तिमान स्वरूप हैं और वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो उनको रोक रहे हैं। इसे कहते हैं सर्व आकर्षक कृष्ण को आकर्षक आकर्षित करना, और ये परिवर्तन जब तक हमारे अंदर नहीं आता, उस लेवल तक का परिवर्तन, तो भगवान की जो, भगवान का जो अटेंशन है हमारी ओर, पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसकी। तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक कुछ समय के लिए लाइट्स बंद करो, लाइट्स ही बंद करना खाली। और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्या समझ में आया आप लोगों को हमारे डिस्कशन के संदर्भ में? इंप्रेसिव लगा ये कुत्ता? नहीं? आप लोग पूछ रहे हैं मिलेगा क्या घर के लिए? मुद्दा यहां पर ये है कि कौन सी, इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज हमको इंप्रेसिव लगी? क्या आप कहोगे? सर्विस एटीट्यूड, अनोखी चीज क्या लगी आपको? क्या अनोखी चीज ये नहीं लगी कि जो हम कभी अपेक्षा नहीं करते थे कुत्ते से, है ना? कभी आपने अपेक्षा की कि कुत्ता पोछा मारेगा, सीढ़ी डालेगा, पॉलिश करेगा, क्या क्या सारी चीजें, है ना? कभी अपेक्षा नहीं की ना? तो सबसे इंप्रेसिव चीज क्या है जो हम कभी अपेक्षा नहीं किए, वो सारी चीजें कुत्ता कर रहा है। तो वैसे क्योंकि उसका शरीर उसके लिए बनाया नहीं गया, उसकी बुद्धि, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, ये सब कार्य करने के लिए नहीं बनाई। इसलिए आप देखो जब छोटे बच्चे भी कोई बड़े का कार्य करते तो इंप्रेसिव लगते ना, क्योंकि उससे उनसे वो अपेक्षा नहीं है। तो पॉइंट ये वीडियो दिखाने का ये है कि भगवान भी जब हमको देखते हैं कि भाई ये कलयुग में भौतिक शरीर लेकर सारे प्रकार के असत्संग से घिरा हुआ मेरी भक्ति कर रहा है। So when it was least expected, when Krishna sees us doing things to please him, impresses him. जैसे हमको ये कुत्ता इतना impressive इसलिए लगा। अरे वो very impressive. अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजें हमारे साधना भक्ति में, हम जब भक्तों के साथ रहते हैं तो हमारा एक एक्सपेक्टेशंस का लेवल रहता है ना? जैसे मान लो कि पति पत्नी दोनों डिवोटीज हैं, घर पे रह रहे हैं, तो दोनों का एक्सपेक्टेशन एक अलग लेवल का है ना? अब पति पत्नी एक दूसरे का बर्थडे याद रखें, एक्सपेक्टेड है। लेकिन कोई ऐसा डिवोटी जो आपको बहुत कम जानता हो और वो आपको आपके बर्थडे पे विश कर दे, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना? एक डिवोटी मुझे बता रहे थे उनके बर्थडे पर एक उनका एक्सपीरियंस रहा कि हमारा ह्यूमन साइकी कैसे काम करता है। तो जैसे उनका उनका बर्थडे, तो एक के बाद फोन कॉल, एसएमएस, ईमेल, हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, सब 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 सब। तो जिन जिन से उनका एक्सपेक्टेशन था सबका आ गया, पूरे दिन भर एक व्यक्ति का आया नहीं। तो जितनों ने उनको विश किया उनके ऊपर इतना गौर नहीं किया, जिसने एक ने उसने किया क्यों नहीं अभी तक? तो उनका ये रियलाइजेशन था, मेनी टाइम्स इन कलयुग यू नो व्हेन people abundantly shower love on you, you take it so casually, but one person is not showering, your whole focus is on that one person. और वो भी अगर कर दे गलती से, हाँ चलो, then everyone comes in the same club. ये उनका। तो अभी हाल ही में हमारे नंद दुलाल प्रभु हैं ब्रह्मचारी, इधर आए थे ना जो, तो मुझे कुछ मेरे होम्योपैथी मेडिसिन मंगाने थे बॉम्बे से, तो वो औरंगाबाद जाते हैं, नासिक से क्रॉस होते हैं, तो मेरे को लगा कि शायद वो एवरी वीक जाते हैं, तो वो स्टेशन पे मैं जाके कलेक्ट कर लूंगा वो ट्रेन में अगर जा रहे हैं। तो मैंने उनको फोन किया कि प्रभु जी आप औरंगाबाद कब जा रहे हैं नेक्स्ट। तो उन्होंने कहा प्रभु जी मैं तो चित्रकूट में हूं। तो मैंने कहा ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो बोले क्या हो गया प्रभु जी, बोली बोला नहीं मेरे को कुछ ऐसे मेडिसिन मंगाने थे। तो कोई बात नहीं मैं किसी और से मंगा लूंगा, अभी वो चित्रकूट में है तो थोड़ी मैं बताऊं उनको डिटेल्स की कहां से क्या कैसे लाना है। खाली मैं उन्होंने पूछा तो मैंने एक लाइन में कह दिया। मुझे इतना ज्यादा टचिंग लगा कि उन्होंने 3 बार मेरे को SMS करके पूछा प्रभु जी आपको आपके मेडिसिन मिले कि नहीं, आपको आपके मेडिसिन मिले कि नहीं। कहां से जहां से वो चित्रकूट वहां जहां वो यात्रा के एडवांस पार्टी में गए थे अरेंजमेंट करने के लिए, मतलब जब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और वो भी अभी अगर हम उनकी जगह पे होते तो हम बोले हम तो सीना ठोक के बोले प्रभु जी मैं तो चित्रकूट में, आप क्या मैं क्या मेडिसिन लाऊंगा, मंगा लो किसी और से। बट छोटी छोटी चीजें कैसे जिसको कहते हैं ना हृदय को छू जाती है, कि उन्होंने वो मेडिसिन लाकर नहीं दिया फिजिकली। तो मैं वही उसके बारे में सोच रहा था कि यदि हम लोग जो इतने अनर्थों में रचे पचे एक छोटा सा जेस्चर कंसर्न कैन मेल्ट अवर हार्ट, हाउ मच कृष्णा हु इज सो सुप्रीमली सेंशियंट सेंसिटिव, कितना उनका हृदय सेंसिटिव है कि वो छोटी छोटी चीजें कैसे गौर करते हैं और वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे ये वीडियो दिखा है इसमें वो कुत्ता अपेक्षित नहीं था ये सब करने के लिए, लेकिन उसने बिना अपेक्षा के ये सारे कार्य किए तो उसका वीडियो बना है। कितने कुत्ते घूमते रहते हैं उनका वीडियो बनता है क्या कभी? और उसका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जेसी प्रोडक्शन हाउस, कुत्ते का नाम है जेसी, उसका खुद का प्रोडक्शन हाउस बन गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कार्य करने लगा जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है उससे। तो पॉइंट ये है कि भक्ति में भगवान के लिए या भक्तों के लिए या आंदोलन के लिए जब हम ऐसे कार्य करना शुरू करें व्हेन इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, दैट इज द मोस्ट इंप्रेसिव। 16 माला तो हाँ वो तो एक्सपेक्टेड है ही, 4 नियम तो एक्सपेक्टेड है ही, मंदिर में आके दंडवत करना एक्सपेक्टेड है ही, तिलक लगाना एक्सपेक्टेड है ही, जब एक दूसरे को मिलते हैं हरे कृष्णा बोलना एक्सपेक्टेड है ही। वी हैव टू लुक फॉर दोज थिंग्स विच वी एक्सचेंज विथ ईच अदर व्हेन इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। जैसे मेरा नंद दुलाल प्रभु के साथ ये जो इंट्रैक्शन है, किसी के साथ हुआ ऐसा व्हेन सम डिवोटी अनएक्सपेक्टेडली डिड समथिंग फॉर यू, it touched your heart, or you did something for someone without the other person expecting you to do that? Mike, uth ke aana padega kisi ko.
हरी बोल प्रभु जी। मेरे ससुर जी एक बार बीमार थे, आई मीन ही वॉज ऑन डेथ बेड। तो मैंने एक जस्ट सब भक्तों को एक
नहीं चल रहा
तो मैंने सबके लिए SMS किया था कि प्रे करो करके इनके लिए। तो मैं ससुर जी के लिए तो गौरांग प्रभु को भी मैंने SMS किया था, दैट टाइम ही वॉज इन जगन्नाथपुरी। तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसे, तो उनका SMS आया, यस आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर हिम। और बाद में उन्होंने मुझे वापस एक SMS भेजा कि आई एम इन जगन्नाथपुरी, तो मतलब मैं अभी भगवान के सामने हूँ और मैं अभिषेक करने वाला हूँ, तो काइंडली गिव मी हिज गोत्र, उनका नाम सब बताओ, सो दैट आई कैन ऑफर. तो आई वॉज जस्ट इम्प्रेस्ड कि इट वॉज मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड, ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं था. सो आई मतलब मैंने दिया उनको फिर, तो ही प्रेड फॉर दैट.
जय हरि बोल. जैसे खीर चोर गोपीनाथ की कथा है कि खीर चोर गोपीनाथ माधवेंद्रपुरी, उन्होंने खाली सोचा कि ऐसी खीर में हमारे गोपाल जी के लिए बनाऊं तो अच्छा रहेगा, खाली उन्होंने सोचा. उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोपीनाथ जी वो खीर चुरा के रखेंगे अपने धोती के पीछे और फिर अपने पुजारी को कहेंगे कि ये मैंने माधवेंद्रपुरी के लिए निकाल के रखा है, उनको ही जाके दो. उन्होंने ये चीज भगवान से एक्सपेक्ट नहीं की थी. जैसे उड़पी में ही मुझे याद है, तो जिस बीच हाउस में हम लोग थे लास्ट दिन, जब अभी हमको सब पैक करके वापस बम्बई जाना है, तो महाराज ने कहा अभी हम ये पूरे बीच हाउस को साफ करेंगे. तो अभी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब महाराज ने ये नहीं बोला मुझे कि तुम साफ करो या यहाँ के किसी लेबर को बुला के साफ करवा लो. महाराज बोले हम साफ करेंगे, वी विल क्लीन. तो मैं और महाराज दोनों अकेले उतरे, बहुत बड़ा बीच हाउस था वो, मतलब ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड प्लस वन ऐसा था वो. ऊपर कमरे थे, नीचे तो ऊपर तो कुछ यूज ही नहीं करते थे, फिर भी सब रूम्स में जाके महाराज सारे टॉयलेट्स में जाके एक एक टॉयलेट को जाके साफ कर रहे थे. तो वो चीज जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और मतलब महाराज जो खुद रूम और टॉयलेट यूज कर रहे थे वो तो उन्होंने किया, और बाकी जो जितने उस घर में जितने टॉयलेट थे, इवन जो रूम और टॉयलेट मैं यूज कर रहा था वो भी महाराज साफ करने गए. तो मैं महाराज I will have to commit suicide if you do this. और महाराज ने बिल्कुल सुना नहीं. महाराज बोले I am ordering you, get out, do other stuff. This is my department. तो वो इतना ज्यादा टचिंग लगा. और बहुत बार हम लोग सुबह सुबह जैसे ही मैं महाराज अपने कमरे से बाहर आते, मैं महाराज को पूरा दंडवत करता, महाराज भी करते दंडवत. पॉइंट ये है कि जैसे खीरचोर गोपीनाथ, इन्होंने गौरंग प्रभु का उदाहरण दिया, महाराज का, नंद दुलाल प्रभु का. होता क्या है कि जैसे हमने विशलिस्ट का एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग हमारे विशलिस्ट को लेके इतना सब जगह घूमते रहते हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग क्यों नहीं कुछ ऐसे कार्य करें आंदोलन के लिए, दूसरे भक्तों के लिए, जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया. और वो सबसे ज्यादा हृदय को छूने वाली. इसलिए भक्ति जो है उसको बिल्कुल भी मैकेनिकल नहीं बताया गया है, क्योंकि मैकेनिकल तौर पर क्या होता है कि व्हेन यू डू समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड, इवन मटेरियली स्पीकिंग, आप देखो कि आप एयरलाइंस कहीं पर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या ट्रेन में वो जो एयर होस्टेस वगैरह होते हैं उनका जो एक्सपेक्टेड है, वो लोग आपको सेवा जो करते हैं उतना ठीक है, लेकिन उस आउट ऑफ द वे जाकर अगर वो कुछ करें तो तुरंत वो बात नजरों में आती है ना, आउट ऑफ द वे जाकर. तो इसलिए भक्ति का जो क्रक्स है परिवर्तन, हम लोग जो परिवर्तन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो एक्सपेक्टेड परिवर्तन है वो इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहेगा. रहेगा हमारे खुद के प्रगति के लिए होगा, वो हेल्पफुल रहेगा, परंतु यदि हमें भगवान को आकर्षित करना है तो हमारे अंदर कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड गुण हमें पैदा करने हैं, हमारे कार्यों से, हमारी साधना से, हमारे डेडिकेशन, हमारे सरेंडर से, कि जैसे भगवान ने रूप सनातन गोस्वामी को रोका कि प्लीज स्टॉप दिस, योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग. और अक्सर हम क्या बोलते हैं, हमारे केस में होता है क्या, भगवान हमको बोलते हैं प्लीज स्टॉप योर फॉल्स प्राइड, योर फॉल्स प्राइड इज ब्रेकिंग माई हार्ट इन टू पीसेस. हाँ यस प्रो, आपको जोर से बोलना पड़ेगा. अच्छा आ गया माइक, आ गया.
ये राधानाथ महाराज के बारे में ही है, थोड़ा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था इसलिए मैंने बहुत ही कम लोगों को एक भागवतम क्लास में हमारे यहाँ पर शेयर किया था, मगर अभी मुझे लगा कि ये रिलेवेंट है तो बताना चाहिए. तो महाराज के वहाँ पर जो उनका घर था, जो उनके डिसाइपल ने खरीद लिया उनके लिए, और महाराज वहाँ पर रहते थे,
बलराम प्रभु.
तो फिर उनको और महाराज के पिताजी को, ऐसे सिर्फ 4-5 लोगों को महाराज ने एक जगह पर बुलाया, और फिर बलराम प्रभु को भी वहाँ पर बुलाया. बलराम प्रभु ने ये चीज़ एक माताजी को बताई है, जो हमारे यहाँ से नासिक से प्राजक्ता माताजी, जो महाराज जब वहाँ पर आने वाले थे रहने के लिए उस घर में, तो क्लीनिंग के लिए माताजी और अर्जुन को प्रभु को उन्होंने बुलाया था, और 15 दिन बलराम प्रभु, उनकी वाइफ, महाराज, हमारे प्राजक्ता माताजी और अर्जुन को प्रभु, ये 5 लोग महाराज के साथ रहे. तो इसीलिए माताजी को ये सब कुछ पता था, और उन्होंने एक दिन यूएसए हमको फ़ोन करके 1.5 घंटा ये सब कुछ बताया था, सब लीलाएं. तो महाराज के फादर ने उनको पूछा कि इतने इसमें आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, हमको ज़रा शेयर कीजिए. तो महाराज ने उनको बताया कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, मगर मैं सिर्फ एक क्लोज ग्रुप है इसलिए आपको बता रहा हूँ. तो महाराज यूके गए थे, और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के सब लीडर्स की एक छोटी सी मीटिंग बुलाई गई थी, जो अलग अलग फील्ड से है वो लीडर्स. तो उसमें फिर बहुत बड़े बड़े धनी व्यक्ति भी थे, तो वहाँ फिर सब ने अपने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताया. तो महाराज ने भी एक 5 मिनट्स का लेक्चर दिया था. तो उसके बाद एक बहुत ही धनी व्यक्ति जो अमेरिका के हैं, वो महाराज को मिलने आए और बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सेंट व्यक्ति यहाँ पर आया है और इतना अच्छा आपने बात बताई, तो आप कुछ भी मान सकते हो मुझे, मेरे पास बहुत धन है, मैं आपको दे सकता हूँ. तो महाराज ने उनका हाथ हाथ में लिया और बोला कि मैं आपकी फ्रेंडशिप मांगता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो फिर वो व्यक्ति ने बोला कि वो एकदम उनके चेहरे में आंसू आ गए कि मेरा आज तक तो कोई फ्रेंड ही नहीं है. तो उन्होंने महाराज को उनका ईमेल एड्रेस दिया और बोला आप जब भी कभी अमेरिका आएंगे तो आप मेरे को बताना. तो नहीं, वो बाद में दिया पर्सनल नंबर. फिर महाराज जब अमेरिका गए तो महाराज ने उस मेल पर किया कि मैं यहाँ पर आया हूँ, और अगर आपको टाइम हो तो हम लोग मिल सकते हैं. तो उस व्यक्ति का रिप्लाई है कि हाँ, आप जहाँ पर उतरे हो वहाँ पर पास में ही एक एयरबेस है, वो मेरा ही है, और हम लोग मिलेंगे. और वो खुद का हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पर महाराज को मिलने के लिए आया, और वो हेलीकॉप्टर खुद उड़ाते हुए आया वहाँ पर. फिर महाराज के को मिला और बोला आप मेरे साथ मेरे घर पे चलो, और खुद बिठाया हेलीकॉप्टर में और उड़ाते हुए उसके घर के ऊपर भी हेलीपैड है, और वहाँ पर लेकर गया. तो फिर महाराज ने बोला कि आप खुद इतने दूर मेरे को लेने के लिए आए? तो बोले अभी फ्रेंड के लिए तो मुझे आना पड़ेगा, मेरा तो एक ही फ्रेंड है पूरे इसमें, वो आप है ऐसे. तो फिर वो महाराज को जब घर पर लेकर गया तो ऐसे बीच पर बहुत बड़ा उनका पैलेस था, और ऐसे उसके बीच के अंदर भी समंदर में भी बहुत सारे कमरे, और ऊपर भी बहुत सारा, ऐसा बहुत ही हाईफाई किस्म का था. तो महाराज को जब दिखा रहा था सब कुछ, तो महाराज को बोला कि मेरे पास ना बहुत पैसा होने के कारण बहुत सारे पॉलिटिशियंस वगैरह मिलने आते हैं, तो मैंने ऐसे सोचा कि मेरा बहुत टाइम उनके इसमें चले जाता है, तो मैंने फिर उनको चार्ज करना शुरू कर दिया. तो $30,000 में चार्ज करता हूँ उनको पैसा भरना पड़ता है, और वो मेरा अपॉइंटमेंट लेके मुझसे आधा एक घंटा मिलते हैं. तो महाराज ने बोला फिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपने मेरे को कैसे टाइम दिया? तो बोले नहीं, वो तो पॉलिटिशियंस है, आप तो मेरे फ्रेंड हो, तो इसीलिए मैं आपको, यानी मैंने आपका टाइम लिया, हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे. मगर ये बात करते हुए वो बोले कि मगर कुछ लोग आए हैं, तो मैं काम करता हूँ, जस्ट हम लोग उनको हाय हेलो करेंगे और मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि वो उनको हैंडल कर लेगी और मुझे खुद अपना पूरा पैलेस आपको दिखाना है। तो महाराज और वो जब एंट्री किए तो बराक ओबामा उधर बैठे हुए थे, तो उस समय वो यूएस के प्रेसिडेंट है, तो उस समय भी थे, ऐसा नहीं किए। तो उस समय फिर महाराज की उन्होंने जब ये की तो उसके पहले महाराज बराक ओबामा इनको मिल चुके थे। तो महाराज ने उस समय बराक ओबामा उनसे तो वो बात करने लगे, तो बराक ओबामा ने महाराज के हाथों में हाथ मिलाया। तो महाराज बोले कि आप यूएस के प्रेसिडेंट होने के कारण आपको बहुत खतरा है, तो मैं भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करूंगा कि आपको वो बचा कर रखे। तो बराक ओबामा रोने लगे और वो महाराज के हाथों पर वो सब आंसू उनके गिरे। तो महाराज ने उनको बोला कि आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए पूरी प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसे फिर वो बीच में पड़े फिर से, नहीं नहीं वो ठीक है, हम लोग निकलते हैं, हम लोग, क्योंकि उनको महाराज के साथ ये करना था। तो बराक ओबामा को फिर अपनी पत्नी से मिलाया उन्होंने और बोला कि आप इनको संभालो और मुझे महाराज को सब कुछ मेरा महल दिखाना है। तो ऐसा पूरा फिर उन्होंने ये सब कुछ दिखाया, फिर कैसे टॉयलेट्स में ऐसे ऐसे डायमंड्स और रूबीज और ऐसा लगा हुआ है कि उधर कुछ भी लाइट की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत ही। तो और उस मुलाकात के बाद में उन्होंने महाराज को अपना पर्सनल नंबर दिया, तो बोले एक्सेप्ट मेरी वाइफ के ये नंबर अभी आपके पास है। तो क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इस ट्रिप से मेरा एक इतना अच्छा फ्रेंड मिलेगा, मगर आपने मेरी वो इच्छा पूर्ण की है, इसलिए मैं आपको ये देना चाहता हूँ। और मैं फिर से आपको पूछता हूँ कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे मांगिए। तो महाराज ने कहा कि मुझे और भी मिल चुका है, मेरे इसमें और एक अच्छा फ्रेंड मुझे मिल चुका है।
हरी बोल। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की। तो हम अगली बार, थैंक यू वृंदावन प्रसाद प्रभु, आपने ये कॉन्फिडेंशियल पास टाइम पब्लिकली नहीं, ऐसा है कि ये जो एक ट्रेंड है अपने संप्रदाय का, जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत बार किसी डिवोटी को कुछ अपना दिखाए, रूप दिखाए, फिर बोले डोंट रिवील दिस टू एनीवन एल्स, और फिर हम देखते हैं उसका फोटो बना हुआ है, उसका पूरा पास टाइम, और सब लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में तो ये हमारे संप्रदाय का ट्रेंड है। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, एक दृष्टिकोण से भगवान कहते हैं ना भगवद गीता के 9वें अध्याय में, राजविद्या राजगुह्यम, तो भगवान बोल रहे हैं कि ये किंग ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स, सब कुछ है, और उसको ओपनली हम लोग बांटते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और जो सीक्रेट है, उसको ओपन सीक्रेट इसलिए बोला जाता है कि वो ओपन है सबके लिए, लेकिन उसको अपने जीवन में हम पूर्ण रूपेण उतार पाए, उसकी चाबी वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो वो चाबी ढूंढने के लिए और वो चाबी लगे उस ओपन सीक्रेट को खोलने के लिए, तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं दिन रात साधना में, सेवा में, प्रचार में। और आशा यही है कि जो भगवान सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, वो एक दिन वो खुलासा उसका हो जाएगा, और जब उसका खुलासा होगा तो अवश्य ही हम भगवत धाम न केवल शारीरिक रूप से वहाँ पे उसको प्राप्त करेंगे, बल्कि यहाँ जीते जी हम, जिसको कहते हैं ना कि जीते जी मुक्त होना, जीवन मुक्त सौचित, जीवन मुक्त की अवस्था वो प्राप्त करें। जय श्री प्रभुपाद की। तो 10 बज चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला कब है जागृति? यात्रा के बाद। यात्रा कितने जा रहे हैं भक्त यहाँ से? बहुत से जा रहे हैं। तो फिर यात्रा के बाद हमारा नेक्स्ट जागृति कार्यक्रम। हरी बोल।